एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया है।
हाँ, ज़ेरेड डायमंड के गन्स, जर्म्स एंड स्टील।
बिल्कुल, और ये किताब एक बहुत बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि भाई दुनिया में इतनी ज्यादा असमानता क्यों है।
सही, क्यों कुछ महाद्वीपों के समाज इतने शक्तिशाली और तकनीकी रूप से आगे बढ़ गए जबकि दूसरे पीछे रह गए?
और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है ना, जब हम वैश्विक विकास, गरीबी, इतिहास की पहेलियों को समझने की कोशिश करते हैं।
जी हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताब उन पुराने मतलब नस्लवादी विचारों को पूरी तरह से खारिज कर देती है।
हाँ, जो कहते थे कि ये अंतर लोगों की बुद्धि या नस्ल की वजह से। डायमंड एक बिल्कुल अलग, एक वैज्ञानिक नजरिए से इसका जवाब ढूंढते हैं।
तो चलिए पहले इस अनोखे लेखक ज़ेरेड डायमंड को थोड़ा जान लेते हैं। वो सिर्फ इतिहासकार नहीं है जैसा आपने कहा।
सही कहा, उनका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। वो UCLA में भूगोल के प्रोफेसर हैं, फिजियोलॉजी में PhD हैं, पक्षी विज्ञान जानते हैं, विकासवादी जीव विज्ञान के विशेषज्ञ हैं।
सोचिए जरा कितना कुछ एक साथ, और उन्होंने दशकों तक न्यू गिनी में फील्ड वर्क किया है, मतलब वहां के लोगों के साथ वो रहे हैं।
और शायद यही चीज उन्हें खास बनाती है, विज्ञान, भूगोल और वो जमीनी अनुभव।
हाँ, इसी मेल ने उन्हें इतिहास के इस बड़े सवाल को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने की क्षमता दी है। वो जेनेटिक्स, पारिस्थितिकी, भाषा विज्ञान, पुरातत्व, अरे यहाँ तक कि बीमारियों के इतिहास का भी इस्तेमाल करते हैं।
एक तरह से वो इतिहास के जासूस हैं जो हर तरह के सुराग का इस्तेमाल करते हैं।
और न्यू गिनी में उनका अनुभव बहुत अहम था। वही उनकी मुलाकात याली नाम के एक स्थानीय नेता से हुई थी।
हाँ, जिसने उनसे वो सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा था, उसी सवाल ने इस पूरी किताब को प्रेरित किया जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसने पूरी खोज को एक मानवीय चेहरा दिया।
तो किताब का बड़ा कैनवस क्या है? ये पिछले 13,000 सालों के मानव इतिहास को देखती है।
हाँ, और समझाती है कि अलग अलग महाद्वीपों पर समाजों का विकास अलग अलग रफ्तार और दिशा में क्यों हुआ।
इसका मुख्य तर्क जिसे डायमंड बार बार साबित करते हैं वो क्या है?
तर्क यह है कि समाजों की किस्मत में जो अंतर आया वो लोगों के दिमागी या नस्ली बनावट की वजह से नहीं, बल्कि उनके पर्यावरण और भूगोल की वजह से आया।
सीधे शब्दों में कहें तो
यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का मिलावा भूभाग, उसको भौगोलिक रूप से कुछ ऐसे फायदे मिले जो बाकी महाद्वीपों को नहीं मिले।
हाँ, और इन्हीं शुरुआती भौगोलिक फायदों ने ही उन चीजों को जन्म दिया जिन्हें डायमंड निकटस्थ कारण कहते हैं, मतलब वो वजह जो हमें फौरन नजर आती हैं।
जैसे
बंदूकें यानी बेहतर हथियार और तकनीक, रोगाणु मतलब वो बीमारियां जिनसे यूरेशियाई लोगों में इम्यूनिटी बन गई थी, और स्टील यानी उन्नत धातु और मजबूत राजनीतिक संगठन।
तो इन्हीं तीन चीजों ने मिलकर यूरेशियाई लोगों को दुनिया के बाकी हिस्सों पर हावी होने में मदद की।
हाँ, तो ये किताब असल में याली के उसी सवाल का जवाब है। आप गोरे लोग इतना सारा माल कार्गो लेकर न्यू गिनी क्यों आए जबकि हम काले लोगों के पास अपना खुद का माल बहुत कम था?
बिल्कुल, डायमंड इसका एक लंबा, विस्तृत और सबूतों पर आधारित जवाब देते हैं। चलिए अब जरा किताब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि डायमंड अपने तर्क कैसे बनाते हैं।
ठीक है, शुरुआत होती है प्रस्तावना से, जहां याली का वो यादगार सवाल आता है। ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के मोड़ लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं, और यहीं से वो मंच तैयार करते हैं उन नस्लवादी जवाबों को चुनौती देने के लिए।
इसके बाद आता है पहला भाग, ईडन से कहामार्का तक। डायमंड हमें समय में पीछे ले जाते हैं, लगभग 11,000 ईसा पूर्व।
हाँ, उस समय दुनिया के सारे इंसान शिकारी संग्राहक थे, मतलब शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके जीते थे। सब लगभग एक ही शुरुआती रेखा पर थे।
यही डायमंड इतिहास के प्राकृतिक प्रयोग का एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं, पॉलिनेशन द्वीपों का।
हाँ, माओरी और मोरियोरी लोगों की कहानी, कमाल की बात है वो,
है ना? ये दोनों समूह एक ही पूर्वजों से निकले थे लेकिन कुछ ही सदियों में बिल्कुल अलग हो गए।
न्यूजीलैंड की उपजाऊ जमीन पर बसे माओरी तो घनी आबादी वाले किसान बन गए, कुशल कारीगर और भयंकर योद्धा।
और वहीं ठंडे अलग थलग पड़े चाथम द्वीप पर बसे मोरियोरी वापस सरल शिकारी संग्राहक बन गए, छूटी आबादी, शांतिप्रिय, बिना जटिल तकनीक के।
और जब बाद में माओरी ने चाथम द्वीप पर हमला किया तो नतीजा पहले से तय था।
हाँ, उन्होंने मोरियोरी को आसानी से खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि सिर्फ कुछ 100 सालों में पर्यावरण किसी समाज को कितना बदल सकता है, एक ही मूल के लोगों को भी।
तो ये नस्ल की बात नहीं, माहौल की बात थी।
फिर आता है वो कहां मार्का वाला नाटकीय क्षण। 1532 में स्पैनिश विजेता फ्रांसिस्को पिजारो और इंका सम्राट अतहुआल्पा की मुलाकात।
हाँ, कैसे? सिर्फ 168 स्पैनिश सैनिकों ने 80,000 सैनिकों वाली इंका सेना के सम्राट को पकड़ लिया और एक विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया।
अविश्वसनीय लगता है।
बिल्कुल, और डायमंड इसी घटना का इस्तेमाल करते हैं उन निकटस्थ फायदों को दिखाने के लिए जो पिजारो के पास थे।
क्या क्या थे वो फायदे?
स्टील की तलवारें और कवच, घोड़े जो अमेरिका में थे ही नहीं और जिनसे इंका सैनिक डर गए, थोड़ी बहुत बंदूकें,
समुद्री जहाज बनाने की तकनीक भी थी उनके पास।
हाँ, और एक केंद्रीयकृत राजनीतिक व्यवस्था जो ऐसे अभियानों को समर्थन दे सकती थी, और लिखने पढ़ने की कला जिससे जानकारी जमा और साझा की जा सकती थी।
और एक छुपा हुआ सबसे खतरनाक हथियार भी था, वो बीमारियाँ।
जी हाँ, चेचक जैसी यूरोपीय बीमारियां स्पेनियों के पहुंचने से पहले ही एंडीज में पहुंच चुकी थीं और इनका आबादी को तबाह कर रही थीं, क्योंकि मूल अमेरिकी लोगों में इनके खिलाफ कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी।
तो कहां मार्का थी घटना इन सब फायदों का नतीजा थी। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे फायदे स्पेनियों यानी यूरेशियाई लोगों के पास ही क्यों थे।
यहीं से डायमंड अंतिम कारणों की खोज शुरू करते हैं।
सही, और इसका जवाब हमें मिलता है किताब के दूसरे भाग में, जो खाद्य उत्पादन यानी खेती और पशुपालन पर है।
डायमंड इसे किसान शक्ति कहते हैं। ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था।
खेती और पशुपालन क्यों इतने जरूरी थे?
क्योंकि इनसे शिकारी संग्राहक जीवन की तुलना में प्रति एकड़ कहीं ज्यादा कैलोरी और प्रोटीन मिलता था। इसका मतलब था ज्यादा लोग यानी घनी आबादी।
और जब खाने की चिंता कम हुई तो खाद्य अधिशेष पैदा हुआ।
बिल्कुल, इसी अधिशेष ने समाज के कुछ लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम करने का मौका दिया, जैसे राजा, सैनिक, पुजारी, कारीगर, लेखक।
साथ ही खेती ने लोगों को एक जगह टिक कर रहने पर मजबूर किया, इससे संपत्ति जमा करना, गांवों और शहरों का विकास
और जटिल समाजों का निर्माण संभव हुआ। लेकिन यहाँ एक और पेच है, खाद्य उत्पादन हर जगह एक साथ शुरू नहीं हुआ।
हाँ, ये दुनिया में कुछ ही जगह पर स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ, जैसे मध्य पूर्व का उपजाऊ अर्थचंद्र,
चीन, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और शायद पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका।
इनमें से भी उपजाऊ अर्थचंद्र को सबसे बड़ी शुरुआती बढ़त मिली, लगभग 8500 ईसा पूर्व। क्यों?
क्योंकि वहाँ का पर्यावरण खास तौर पर अनुकूल था। भूमध्य सागरी जलवायु थी, जहाँ जंगली गेहूं और जौ जैसी फसलें बहुत आयत में थी, जिन्हें आसानी से उगाया जा सकता था।
और सबसे जरूरी बात,
वहाँ पालतू बनाने लायक जंगली जानवर भी मौजूद थे, जैसे जंगली भेड़, बकरी, गाय, सुअर।
अच्छा, यहीं पर डायमंड पशुपालन के लिए अपना वो मशहूर अन्ना कारेनिना सिद्धांत लाते हैं।
हाँ, जैसे टॉलस्टॉय के उपन्यास में कहा गया है कि सभी खुश परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है।
वैसे ही डायमंड कहते हैं कि किसी जंगली जानवर को सफलतापूर्वक पालतू बनाने के लिए कई सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए।
बिल्कुल, जानवर की खुराक सही होनी चाहिए, उसकी बढ़ने की रफ्तार तेज हो, वो कैद में बच्चे पैदा कर सके, उसका स्वभाव ज्यादा खतरनाक या डरपोक न हो,
और उसकी सामाजिक संरचना ऐसी हो कि इंसान उसका मुखिया बन सके। अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हुई तो पालतू बनाना नामुमकिन।
और नतीजे चौंकाने वाले हैं। दुनिया के 148 बड़े शाकाहारी या सर्वाहारी जमीनी स्तनधारियों में से सिर्फ 14 को ही सफलतापूर्वक पालतू बनाया जा सका,
और इन 14 में से 13 यूरेशिया के मूल निवासी थे। सोचिए, भेड़, बकरी, गाय, सुअर, घोड़ा, गधा, ऊंट, भैंस, ये सब यूरेशियाई समाजों के पास थे।
अमेरिका के पास सिर्फ लामा था। उप सहारा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के पास एक भी बड़ा पालतू स्तनधारी नहीं था।
घोड़ों और बैलों ने यूरेशियाई समाजों को खेती, परिवहन और युद्ध में जो जबरदस्त बढ़त दी, उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतिम कारण था।
तो अब कड़ी जुड़ रही है, बेहतर फसलें और ज्यादा पालतू जानवर मतलब बेहतर पोषण, ज्यादा आबादी और ज्यादा अधिशेष।
अब किताब का तीसरा भाग हमें बताता है कि ये फायदे सीधे तौर पर बंदूकें, रोगाणु और इस्पात में कैसे बदले। सबसे पहले बात करते हैं रोगाणुओं की।
हाँ, जिन्हें डायमंड पशुधन का घातक उपहार कहते हैं। ये शायद किताब का सबसे सनसनीखेज हिस्सा है।
कैसे?
चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, प्लेग जैसी ज्यादातर घातक संक्रामक बीमारियां मूल रूप से पालतू जानवरों की बीमारियां थीं, जो इंसानों में आ गई।
अच्छा।
क्योंकि यूरेशियाई लोग हजारों सालों से अपनी भेड़, बकरी, गाय, सुअर के साथ घनी आबादी में रह रहे थे, वो लगातार इन रोगाणुओं के संपर्क में आते रहे। वक्त के साथ उनमें इन बीमारियों से लड़ने की थोड़ी बहुत आनुवांशिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई।
लेकिन जब यूरोपीय लोग नई दुनिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो वो अनजाने में इन रोगाणुओं को अपने साथ ले गए।
और वहाँ के मूल निवासियों का इन जानवरों से कभी कोई संपर्क नहीं रहा था, इसलिए उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की कोई क्षमता ही नहीं थी।
तो नतीजा, भयानक महामारियां फैली। कुछ अनुमानों के मुताबिक नई दुनिया की 90-95% तक मूल आबादी सिर्फ इन बीमारियों से मर गई।
ये यूरोपीय विजय का सबसे बड़ा हथियार था। बंदूकों और तलवारों से भी कहीं ज्यादा घातक ये अदृश्य हत्यारे थे, जिन्होंने यूरोपीय लोगों के लिए रास्ता साफ कर दिया।
ये दिखाता है कि जानवरों को पालतू बनाने का एक कितना प्रत्याशित और भयानक परिणाम भी हो सकता था।
फिर बात आती है लेखन कला की। डायमंड बताते हैं कि लेखन का आविष्कार भी स्वतंत्र रूप से सिर्फ कुछ ही बार हुआ,
और वो भी उन्हीं जटिल समाजों में जहाँ खेती विकसित हो चुकी थी और हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी।
हाँ, जैसे सुमेरिया, मेजो अमेरिका, ज्यादातर जगहों पर लेखन फैला, कॉपी किया गया या विचार उधार लिया गया। ये भी अधिशेष और विशेषज्ञता का ही नतीजा था।
और तकनीक के बारे में डायमंड का नजरिया थोड़ा अलग है। वो जरूरत आविष्कार की जननी है वाली कहावत पर सवाल उठाते हैं।
हाँ, उनका कहना है कि कई बार आविष्कार पहले होता है और उसका इस्तेमाल बाद में पता चलता है। तकनीक धीरे धीरे टुकड़ों में विकसित होती है।
लेकिन बड़े घनी आबादी वाले और आपस में जुड़े हुए समाजों में आविष्कार ज्यादा होते हैं और तेजी से फैलते हैं। यूरेशिया में यही हुआ।
और आखिरकार राजनीतिक संगठन, छोटी बराबरी वाली शिकारी संग्राहक टोलियों से लेकर बड़े केंद्रीकृत राज्यों तक का सफर भी जनसंख्या घनत्व और खाद्य उत्पादन से जुड़ा है।
जब आबादी बढ़ी और जमीन पर दबाव बढ़ा, तो झगड़ों को निपटाने, बड़े सिंचाई के काम करने और बाहरी हमलों से बचने के लिए बड़े और ज्यादा जटिल संगठनों की जरूरत पड़ी, सरदारियां और फिर राज्य।
डायमंड इन शुरुआती राज्यों को मजाक में क्लेप्टोक्रेसी यानी चोरों का राज कहते हैं।
हाँ, क्योंकि शासक वर्ग आम जनता से अधिशेष छीन लेता था।
लेकिन वो ये भी मानते हैं कि यही केंद्रीकृत व्यवस्था बड़े पैमाने पर संगठन और विजय अभियानों के लिए जरूरी थी, और ये सब सिर्फ खेती से मिले अधिशेष के बल पर ही खड़ा हो सकता था।
इसी पूरी कहानी में डायमंड एक और बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक तर्क जोड़ते हैं, महाद्वीपीय अक्ष का तर्क। ये थोड़ा समझने जैसा है।
हाँ, यूरेशिया का महाद्वीप नक्शे पर देखें तो मुख्य रूप से पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है।
इसका फायदा क्या है?
फायदा ये है कि पूर्व से पश्चिम जाते हुए ज्यादातर जगहों पर अक्षांश ज्यादा नहीं बदलता, यानी दिन की लंबाई, मौसम का चक्र और जलवायु काफी हद तक एक जैसे रहते हैं।
तो इससे क्या हुआ?
इससे ये हुआ कि जो फसलें या जानवर मध्य पूर्व में पनपे, वो आसानी से हजारों मील दूर यूरोप और चीन तक फैल गए। तकनीक और विचार भी इसी रास्ते पर आसानी से चल पड़े।
इसके उलट अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हैं।
हाँ, यहाँ उत्तर से दक्षिण जाने पर अक्षांश तेजी से बदलता है, जिससे जलवायु, बीमारियां और पारिस्थितिकी में भारी अंतर आ जाता है।
जैसे?
जैसे मेक्सिको में उगा मक्का एंडीज तक मुश्किल से पहुंचा और एंडीज का लामा मेक्सिको नहीं पहुंच पाया। इसी तरह पहिया मेक्सिको में था पर एंडीज तक नहीं पहुंचा।
तो इस उत्तर दक्षिण अक्ष ने फैलाव को बहुत धीमा कर दिया।
हाँ, तो ये अक्ष वाला तर्क एक और बड़ा अंतिम कारण है जिसने यूरेशिया को दूसरों पर बढ़त दी।
किताब के आखिरी हिस्से में डायमंड इन्हीं सब तर्कों को अलग अलग महाद्वीपों की कहानी पर लागू करते हैं।
हाँ, संक्षिप्त में देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पालतू बनाने लायक पौधों और जानवरों की भारी कमी थी, जिसने विकास को सीमित रखा।
चीन में
यूरेशिया की तरह ही शुरुआती फायदे थे और भौगोलिक एकता ने तेजी से एकीकरण में मदद की।
प्रशांत महासागर में
वहाँ ऑस्ट्रोनेशियन लोगों का फैलाव दिखाता है कि एक अच्छे कृषि पैकेज और नाव बनाने की तकनीक से क्या हासिल किया जा सकता है।
और अमेरिका की विजय,
वो यूरेशिया के हजारों साल के जमा हुए फायदों, जानवर, अक्ष, रोगाणु, तकनीक, संगठन का सीधा नतीजा थी।
अफ्रीका का मामला जटिल है।
हाँ, वहाँ कृषि का विकास हुआ, बंटू लोगों का विस्तार हुआ, लेकिन उत्तर दक्षिण अक्ष बीमारियां जैसे मलेरिया और रेगिस्तान जैसी बाधाओं ने विकास और यूरोपीय उपनिवेशीकरण को अलग तरह से प्रभावित किया।
और अंत में डायमंड फिर से जोर देते हैं कि इतिहास को भाग्य या संयोग की कहानी की तरह नहीं बल्कि एक विज्ञान की तरह समझा जा सकता है।
जी हाँ, जिसके गहरे कारण हमारे ग्रह के भूगोल और पर्यावरण में छिपे हैं। ये पूरी तरह से नस्लवाद को नकारता है।
बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश निकालें तो क्या होंगे?
पहला तो यही कि इतिहास की धारा को मोड़ने में भूगोल और पर्यावरण की भूमिका सबसे बड़ी है, न कि किसी नस्ल की कथित श्रेष्ठता की। यूरेशिया को लॉटरी में बेहतर टिकट मिले थे बस।
दूसरा, खेती और पशुपालन का विकास वो निर्णायक मोड़ था।
हाँ, जिसने समाजों के बीच असमानता की नींव रखी। जहाँ ये जल्दी और बेहतर तरीके से हुआ, वहाँ के समाज आगे निकल गए।
तीसरा, वो निकटस्थ बनाम अंतिम कारणों से सोचने का तरीका, ये बहुत काम का है।
बिल्कुल, हमें सिर्फ बंदूकें, रोगाणु और इस्पात नहीं देखने, बल्कि ये पूछना है कि ये आए कहाँ से। जवाब हमें भूगोल, जलवायु और उपलब्ध पौधों जानवरों तक ले जाता है।
भारत के संदर्भ में भी सोचे तो हमारी विशाल भौगोलिक विविधता, हिमालय, गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, इन सब ने हमारे इतिहास को अलग अलग तरीकों से कितना प्रभावित किया है।
चौथा, यूरेशिया के पूर्व पश्चिम अक्ष का फायदा। सुनने में छोटी बात लगती है, पर विचारों, फसलों और तकनीक के फैलाव में इसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई।
और पांचवा, वो रोगाणु वाली बात, उनकी अनदेखी लेकिन घातक भूमिका।
हाँ, अक्सर हम युद्धों में हथियारों की बात करते हैं, पर बीमारियां शायद उनसे भी ज्यादा प्रभावी थीं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अदृश्य ताकतें भी काम करती हैं।
अब जरा कुछ यादगार विचारों या कहिए कि किताब के कोट करने लायक पॉइंट्स पर बात करें।
हाँ, वो विचार जो दिमाग में अटक जाते हैं। पहला तो डायमंड का मूल मंत्र ही है, इतिहास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिशाओं में इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों के वातावरण में अंतर था, न कि स्वयं लोगों के बीच जैविक अंतर के कारण।
ये पूरी किताब का सार है।
दूसरा, जाहिर है, याली का वो मासूम लेकिन गहरा सवाल, आप गोरे लोग इतना सारा माल लेकर न्यू गिनी क्यों आए? ये हमें याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ अकादमिक बहस नहीं है।
हाँ, बल्कि इंसानी जिंदगी से जुड़ा है।
तीसरा, पशुपालन पर वो अन्ना कारिनियना सिद्धांत, पालतू बनाने योग्य जानवर सभी एक जैसे होते हैं, हर नापालतू बनाने योग्य जानवर अपने तरीके से नापालतू बनाने योग्य होता है।
ये किसी भी सफलता के पीछे कई जरूरी शर्तों के एक साथ आने की बात करता है। ये सिद्धांत तो जीवन के कई क्षेत्रों में लागू होता है।
और चौथा, रोगाणों पर वो चेतावनी, मानव जाति के प्रमुख हत्यारे संक्रामक रोग थे जो जानवरों की बीमारियों से विकसित हुए।
ये हमें प्रकृति और मानव समाज के जटिल और कभी कभी खतरनाक रिश्ते की याद दिलाता है।
इन सब बातों का आज की दुनिया को समझने में क्या मतलब है? हम इनसे क्या सीख सकते हैं?
बहुत कुछ। सबसे पहले तो वैश्विक असमानता को समझने का एक गहरा नजरिया मिलता है।
हाँ, हम देशों के पिछड़ेपन के लिए सिर्फ उनकी सरकारों या संस्कृतियों को दोष देने के बजाय उनके इतिहास, भूगोल और पर्यावरण की बाधाओं को भी समझ सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विकास नीतियों और कूटनीति के लिए बहुत जरूरी सोच है।
और वो सिस्टम थिंकिंग वाली बात भी अहम है, कैसे छोटी छोटी शुरुआती बढ़त या कमी समय के साथ बहुत बड़े अंतर पैदा कर सकती है।
बिल्कुल, इसे हम अपने जीवन में, व्यापार में या तकनीक के विकास में भी देख सकते हैं। कभी कभी शुरुआत में लिया गया एक छोटा सा फैसला आपको एक खास रास्ते पर डाल देता है जिससे हटना मुश्किल हो जाता है।
ये हमें सफलता में भाग्य और परिस्थितियों की भूमिका को भी स्वीकार करना सिखाता है ना?
हाँ बिल्कुल, कोई देश या व्यक्ति सिर्फ अपनी मेहनत से ही सफल नहीं होता, उसे सही माहौल और मौके भी मिलते हैं। ये सोच हमें थोड़ी विनम्रता सिखाती है, ये सेल्फ मेड होने के मिथक को चुनौती देती है।
हाँ, और नवाचार और तकनीक के बारे में भी एक अलग सोच मिलती है कि कैसे ये फैलते हैं और अपनाए जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात, ये नस्लवाद के खिलाफ एक मजबूत वैज्ञानिक तर्क पेश करता है। ये बताता है कि इंसानी समाजों में अंतर पर्यावरण की देन है, न कि किसी नस्लीय कमजोरी या खूबी की।
जैसे अगर हम भारत में ही देखें तो क्यों कुछ क्षेत्र ज्यादा विकसित हैं और कुछ कम? इसके जवाब सिर्फ आज की राजनीति या अर्थशास्त्र में नहीं
बल्कि सदियों पुराने भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों में भी छुपे हो सकते हैं। या कोई कंपनी जब नए बाजार में जाती है तो उसे समझना होगा कि वहां तकनीक अपनाने की रफ्तार धीमी क्यों है। शायद वजह सिर्फ लोगों की आदतें नहीं बल्कि गहरे संरचनात्मक कारण हों।
तो इस पूरे ज्ञान गोष्ठी से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए तो शायद यही कि हमारे ग्रह का भूगोल हमारी किस्मत तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। और हाँ, वो रोगाणुओं वाली बात कि कैसे अनदेखे दुश्मन सबसे ज्यादा घातक साबित हुए हैं।
मेरे लिए सबसे अहम बात शायद यही है कि ये किताब नस्लवादी सोच को कितनी मजबूती से खारिज करती है और उसकी जगह एक वैज्ञानिक तार्किक ढांचा पेश करती है।
हाँ, और इतिहास को सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी की तरह ना देखकर पर्यावरण, जीव विज्ञान और भूगोल के व्यापक नजरिए से देखना।
यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही मानव प्रजाति हैं जिसे हमारे आसपास की दुनिया ने गढ़ा है।
वाकई ये किताब सोचने को बहुत कुछ देती है और दुनिया को देखने का एक नया चश्मा पहनाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एग्जेक्टा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।